الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فرمان علی شان ہے، ارشاد فرمایا کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹہری رہتی ہے، کب تک؟ فرماتے حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں حاضر ہیں. اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج کے سلسلے میں جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی نے اس عنوان کے تحت اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ذکر فرمایا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. آئیے اس کی کچھ تشریح حدیث مبارک کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. اس عنوان کے تحت جو حدیث مبارک امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی لے کر آئے ہیں، وہ حدیث نمبر ہے 125. آپ فرماتے کہ ہم سے قیس بن حفص نے حدیث بیان کی، ان سے عبد الواحد نے، ان سے اعمش سلیمان بن مہران نے، ابراہیم کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے علقمہ سے نقل کیا، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کی. وہ کہتے ہیں، بینا انا امشی مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی خارب المدینہ وہو یتوقع علی حسیب معہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے کھنڈرات میں چل رہا تھا، اور حال یہ تھا کہ آپ کھجور کی چھڑی پر سہارا دے دے کر چل رہے تھے. بس پھر ہوا یہ کہ فمر بنفر من الیہود، تو یہود کے کچھ افراد یا یہود کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا. فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تقرحونه. تو راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ ان سے روح کے متعلق سوال کرو، اور اسی جماعت میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو کہنے لگے کہ نہ بھائی، ان سے کوئی سوال مت کرنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات تمہاری بات کے جواب میں کہہ دیں کہ جو تمہیں ناگوار گزرے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی سوال ہی نہ کرو. فقال بعضهم، لیکن بعض جو تھے وہ ڈٹ گئے اور وہ کہنے لگے، لنسألنہو، کہ ہم ضرور ان سے کچھ نہ کچھ پوچھیں گے، روح کے بارے میں سوال کریں گے. پھر ہوا یہ کہ فقام رجل منہم، उनमें से एक शख्स जो था वो खड़ा हो गया और कहने लगा, या अबुल कासिम, ए अबुल कासिम, मर रूह, रूह क्या चीज है इसके बारे में बताइए। फसकता, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। फकुल्तु इन्नहु यूहा इलैहि फखुन्तु, रावी कहते हैं कि मैंने दिल में यह ख्याल किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही, यानी आपकी जो कैफियत थी उस वक्त ऐसी हो गई जैसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही हो। आप कहते हैं कि मैं फिर वहां थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया कि मैं देखूं क्या बात आती है। फिर रावी कहते हैं, फलम मन जला अनहु, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कैफियत दूर हो गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी वमा उतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और तुमसे रूह के मुतालिक पूछते हैं, तुम फरमाओ रूह मेरे रब के हुक्म से एक चीज है और ऐ लोगों तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है, इसलिए तुम रूह की जो हकीकत है उसे नहीं समझ सकते। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस आयत मुबारका के हवाले से एक तो शान नज़ूल यही है जो सही बुखारी शरीफ के हदीस मुबारक में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया, और दूसरा एक और शान नज़ूल इसके हवाले से मिलता है और वो ये है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि कुरैश ने यहूद से कहा, हमें कोई ऐसी बात बताएं जिसे हम इनसे यानी मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम से जाकर के हम पूछें, उनसे सवाल करें। उनका मकसद ये था कि हम पूछेंगे वो बयान नहीं कर पाएंगे, कोई ऐसी बात बताओ कि जो मुश्किल हो। तो उन्होंने इनको कहा कि तुम इनसे रूह के मुतालिक सवाल करो। फिर कुरैश ने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में रूह से मुतालिक सवाल किया तो तब ये आयत मुबारका नाजिल हुई, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी वमा उतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। मदनी चैनल के नाजरीन, रूह के मुतालिका ये दो रिवायात हैं, इनमें तत्बीक क्या होगी? आया कि ये आया मुबारका पहले शान नजूल के मुताबिक नाजिल हुई या दूसरी हदीस मुबारक में जो शान नजूल बयान किया गया है उसके मुताबिक नाजिल हुई? बुखारी शरीफ की रिवायत से ये जाहिर होता है कि ये आया मुबारका मदनी है, यानी मदीना मुनवरा में नाजिल हुई, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके तशरीफ ले आए थे उस वक्त हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद ने रूह के मुतालिक सवाल किया। और अगर तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत को सामने रखते हैं तो उससे ये जाहिर होता है कि ये आयत मक्की है। इन दोनों अहादीस में एक तस्बीक तो यूं दी जा सकती है कि मुमकिन है ये आया मुबारका दो मरतबा नाजिल हुई हो। पहली मर्तबा तो मक्का मुकर्रमा में उस वक्त नाजिल हुई कि जब कुफारे कुरैश ने रूह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, और दूसरी बार मदीना मुनव्वरा में उस वक्त नाजिल हुई कि जब यहूद ने रूह के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। यानी बुखारी की हदीस के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से जो हदीस रिवायत है तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर उसके मुताबिक ये रिवायत जो है ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। यानी मुमकिन है दो मरतबा नाजिल हुई, एक मरतबा मक्का मुकर्रमा में और दूसरी मरतबा मदीना मुनव्वरा में। और दूसरी तत्वीक यूं भी दी जा सकती है जैसा कि अलामा इस्माइल बिन उमर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इसी मकाम पर इसको जिक्र फरमाया, फरमाया बुखारी शरीफ की रिवायत में इस बात की सराहत नहीं है कि इसी आयत की उस वक्त वही नाजिल हुई। वो रिवायत के जिसे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि हजूर खामोश हो गए, वही की कैफियत आपके ऊपर तारी हो गई, मैं वहां खड़ा हो गया और जब आप गोया हुए तो आपने ये आयत तिलावत फरमाई। वहां पर यह जिक्र नहीं है कि उस वक्त हजूर नबी अलैहिस्सलाम पर यही आयत नाजिल हुई थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुजूल वही की कैफियत तारी होने का जिक्र है। इसलिए मुमकिन है कि उस वक्त ये वही हुई हो कि यहूद के सवाल के जवाब में वही आयत तिलावत फरमा दे जो इससे पहले मक्का मुकरमा में नाजिल हो चुकी है। और वो आयत क्या है? वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत में यह बता दिया गया कि रूह का जो मामला है वो इंतहाई कॉन्फिडेंशियल है, इंतहाई पोशीदा है, और इसके बारे में इल्म हकीकी सबको हासिल नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला जिसे अता फरमाए वही इसको जान सकता है। जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसका इल्म अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाया। अलामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला ले फरमाते हैं कि एक जमात ने यह गुमान किया कि अल्लाह तबारक व ताला ने रूह का जो इल्म है ये मखलूक के ऊपर मुबहम रखा है और अपनी जात के साथ इसे खास कर दिया है, यानी मखलूक को नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ ये इल्म अल्लाह तबारक व ताला की जात पाक के साथ खास है। यहां तक के उन्होंने ये भी कह दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी रूह के बारे में इल्म नहीं रखते, हालांकि अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मनसब है, आपका जो मकाम है, वो इससे बहुत ज्यादा अजीम है कि आपको भी रूह का इल्म ना दिया जाए। हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तो आलिम बिल्ला हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने ये इरशाद फरमाकर आप पर एहसान फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो जो आप ना जानते थे, और आप पर अल्लाह का फजल बहुत बड़ा है। तो इन लोगों ने यह गुमान किया कि रूह का जो इल्म है उन उलूम में से है जो अल्लाह तबारक व ताला को ही इल्म है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने नहीं सिखाया। क्या उन्हें इस बात की खबर नहीं कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को वो सब कुछ सिखा दिया जो आप ना जानते थे, और ये आप पर अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा फजल है। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। इस आयत मुबारक से भी ये बात पता चलती है कि रूह का इल्म भी अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अलामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला ले इसी हदीस मुबारक के तहत शरह में बयान फरमाते हैं कि हजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का मनसब बहुत बुलंद है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के हबीब हैं और उसकी मखलूक के सरदार हैं। जी हाँ, तमाम मखलूक के सरदार और रब के महबूब। और ये कैसे हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम को रूह के बारे में इल्म ना हो? हालांकि अल्लाह तबारक व ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह इरशाद फरमाकर एहसान फरमाया कि ए महबूब, आपको हमने वो सब कुछ सिखा दिया जो आप ना जानते थे, और ये आप पर अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा फजल है। तो इससे यह पता चलता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने रूह का इल्म भी अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया। हजरत अलामा इब्राहिम बाजोरी अलैहि रहमतुल्लाह अल-कवी, आपने लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने से पहले अल्लाह तबारक व ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूह और उसके अलावा हर मुबहम चीज का इल्म अता फरमा दिया था। यानी इससे पहले कि हजूर जाहरी पर्दा फरमाते, رب تبارک و تعالی نے نہ صرف روح کے بارے میں بلکہ ہر وہ چیز کہ جو مبہم چیز تھی اس کا علم بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، یہاں کوئی یہ وہم نہ ڈال دے کہ یہ شرک ہے کہ روح کا علم رب کے پاس بھی ہے اور مخلوق کے پاس بھی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیہ مبارکہ کے تحت اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، علم حادث علم قدیم کے مقابلے میں تھوڑا ہے، کیونکہ بندوں کا علم یہ متناہی ہے، یعنی اس کی ایک انتہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اور متناہی علم غیر متناہی علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اس عظیم سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر مخلوق میں سے کسی کو علم عطا فرمائے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ علم میں اللہ تبارک و تعالی کے علم کے مقابلے میں ہو جائے گا، بلکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک کو آپ ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا و علی صلات و السلام اور حضرت خضر علی نبینا و علی صلات و السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے سفر کیا، کشتی میں سوار ہو کر دوران سفر جب یہ جا رہے تھے تو ایک چڑیا کشتی کے کنارے پہ بیٹھی، اور کشتی کے کنارے میں بیٹھ کر اس نے ایک دو چونچے سمندر میں ماری، یعنی کچھ نہ کچھ پانی اس کی چونچ میں آ گیا ہوگا۔ تو حضرت خضر علی نبینا و علی صلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علی نبینا و علی صلاۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے آپ فرمانے لگے کہ میرا اور آپ کا علم، دونوں حضرات انبیاء ہیں، حضرت خضر علیہ السلام بھی اور حضرت موسیٰ علی نبینا و علی صلاۃ والسلام بھی، دونوں اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا علم اللہ تبارک و تعالی کے علم کے سامنے اس طرح ہے جیسے چڑیا کا سمندر میں چونچ مارنا۔ یہ سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا کہ ہمارا علم اللہ تبارک و تعالی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے دو قطرے چڑیا کی چونچ میں ہیں اور ادھر سمندر ہے، تو سمندر سے یہ دو قطرے پانی کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کا جو علم ہے یہ علم قدیم ہے، جبکہ ہمارا مخلوق کا جو علم ہوتا ہے یہ علم حادث ہے۔ علم حادث اور علم قدیم ان دونوں کا مقابلہ نہیں، کیونکہ جو بندوں کا علم ہے وہ متناہی ہے، اس کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے وہ غیر متناہی ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ متناہی علم غیر متناہی علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے اس عظیم سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی اولیاء کا علم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سات سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ سات سمندر ایک طرف ہیں اور ایک قطرہ ایک طرف ہے، کیا جوڑ بنتا ہے؟ اولیاء کا علم ایک قطرہ ہے، اور انبیاء کا جو علم ہے ان اولیاء کے مقابلے میں وہ سات سمندر ہیں، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سات سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ تبارک و تعالی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سات سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ تو وہ علم جو بندوں کو دیا گیا ہے فی نفسی ہی اگرچہ کثیر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے علم کے مقابلے میں وہ تھوڑا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ بات صرف اور صرف हमने सिलसिले में समझाने के लिए शामिल की, वरना मुतनाही और गैर मुतनाही में कोई निस्बत ही नहीं है। आइए ज़मनन रूह का लुगवी माना भी आप समाज फरमाइए। रूह का लुगवी और इस्तिलाही माना जो है वो उलमा ने अपनी किताबों में बयान फरमाया। कुरान और हदीस में रूह के कई इत्तिलाकात बयान किए गए हैं और इसका कई माना पर इत्तिलाक किया गया है। इसका गालिब जो इत्तिलाक है वो उस चीज पर आता है जिसके साथ जिस्म कायम होता है और जिसके सबब से जिस्म में हयात होती, जिस्म कायम है, खड़ा तड़ा नजर आता है और जिस्म में हयात है, ये उसी के सबब से है। इसके अलावा रूह का जो इत्तिलाक है वो कुरान पर भी आता है, वहीं पर भी आता है, रहमत पर भी आता है, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी कुरान में रूह का इत्तिलाक किया गया है। चंद एक मैं आपके गोश गुजार करता हूं। कुरान मजीद में रूह का जो इत्तिलाक है वो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फरमाया गया। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, नाज़ाला बिहिर रूहुल अमीन, इसे रूहुल अमीन लेकर नाजिल हुए। इस आया मुबारका में रूह का जो इत्तिलाक है वो सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अमीन अला नबीना व अली सलातु वस्सलाम पर किया गया है। और एक मकाम पर रूह का इत्तिलाक कुरान पर भी किया गया है, जैसा कि सूरह शूरा में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना, और यूं ही हमने तुम्हारी तरफ अपने हुक्म से रूह यानी कुरान की वही भेजी। वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना, इस आय मुबारका में जो रूहन का लफ्ज आया है ये कुरान के लिए बोला गया। अलामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस उन्वान के तहत बयान फरमाया कि बास उलमा ने कहा कि रूह खून है, और इसकी तारीफ के अंदर आप फरमाते हैं कि 70 अकवाल किए गए हैं, यानी कोई एक कौल नहीं है कि रूह का इतलाक किस पर करें, इसके ऊपर तो 70 अकवाल आते हैं। इसमें इख्तिलाफ है कि आया रूह और नफ्स एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि बाद लोग नफ्स पर भी रूह का इतलाक करते हैं, तो दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस पर अलामा आइनी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज्यादा सही यह है कि रूह और नफ्स ये दोनों मुतगायर हैं, यानी अलग अलग चीजें हैं। नफ्स इंसानी ये वो चीज है जिसकी तरफ हम में से हर शख्स मैं या हम से इशारा करता है कि मैं आया, हम आए, वो आया, तो ये नफ्स इंसानी वो चीज है जिसकी तरफ हम में से हर शख्स मैं या हम से इशारा करता है, और जो रूह है वो इससे मुख्तलिफ है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अले रहमतुल्लाह वाली ने लिखा कि रूह एक जौहरे हादिस है जो बी नफ्स ही कायम है, गैर मुतहज्जिज है, यानी वो जगह नहीं घेरता, वो जिस्म में न दाखिल है न खारिज है, वो जिस्म से मुत्तसिल है न मुनफसिल है। और इसके हवाले से एक कौल ये भी मिलता है कि रूह जिस्म की सूरत की तरह एक लतीफ सूरत है, इसकी दो आंखें भी हैं, दो कान भी हैं, दो हाथ भी हैं, दो पैर भी हैं, और जिस्म के हर उज्व के मुकाबले में इसका एक लतीफ उज्व होता है। और अलामा ऐनी ने एक और कौल नकल किया, वो ये है कि वो इंसान के बदन में एक लतीफ जिस्म है और उसका इंसान के जिस्म में इस तरह हुलूल होता है जिस तरह गुलाब के पानी का गुलाब में हुलूल होता है, यानी जुदा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वही चीज हो, इसके साथ मुत्तसिल इस अंदाज में है कि हुलूल किया हुआ है, जैसे गुलाब का पानी गुलाब के फूल में हुलूल किया हुआ है का। इसी तरह जो रूह है वो बदने इंसानी में एक लतीफ जिस्म है और उसका इंसान के जिस्म में एक इसी तरह हुलूल है जिस तरह गुलाब के पानी का गुलाब के अंदर हुलूल होता है। बहरहाल हुकमा, उलमा, मुतकद्दिमीन, मुताखिरीन का रूह की तारीफ में بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. علامہ عینی نے یہاں تک کہ بیان فرما دیا کہ 70 اقوال اس کی تعریف کے اندر ملتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین, روح ایک امر ربی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جو علم ہے وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا, کیونکہ وہ خود فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے, اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا آپ پر ایک بہت بڑا فضل ہے. تو جو چیزیں بھی تھیں, خواہ اس کا تعلق روح سے ہے یا اس کے علاوہ ہر وہ چیز کے جو مبہم تھی, آپ کے وصال ظاہری سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا علم اپنے محبوب پر فضل فرماتے ہوئے انہیں عطا فرما دیا. اللہ کریم ان تمام باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم.
ایمان ہے قول مصطفیٰ